नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नार ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। मैक्सवेल माल्ट की पुस्तक साइको साइबरनेटिक्स पहली बार 1960 में प्रकाशित हुई और आत्मविकास साहित्य की एक प्रभावशाली कृति मानी जाती है। पेशे से प्लास्टिक सर्जन रहे मार्ज ने देखा कि बाहरी रूप में सफल बदलाव के बाद भी अनेक रोगियों की असुरक्षा और असंतोष बने रहते हैं। इस अनुभव से उन्होंने तर्क दिया कि व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार उसके बाहरी रूप से नहीं बल्कि अपने बारे में बनी आंतरिक छवि से संचालित होता है। पुस्तक मनोविज्ञान को साइबरनेटिक्स अर्थात लक्ष्य की ओर दिशा सुधारने वाली नियंत्रण प्रणालियों के विचार के साथ जोड़ती है। मार्ट्स मन को एक लक्ष्याभिमुख तंत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो जिस परिणाम चित्र और आत्मधारणा को स्वीकार करता है उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया, चुनाव और आदतें गढ़ता है। इसका उद्देश्य केवल सकारात्मक सोच सिखाना नहीं है बल्कि कल्पना, मानसिक पूर्वाभ्यास, विश्राम और अधिक यथार्थवादी आत्म स्वीकृति के माध्यम से सीमित करने वाली धारणाओं को बदलने का व्यावहारिक ढांचा देना है। पुस्तक की कुछ वैज्ञानिक व्याख्याएं आज पुरानी लग सकती हैं, फिर भी आत्म छवि और व्यवहार के संबंध पर इसका केंद्रीय जोर आज भी उपयोगी है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, आत्म छवि को व्यवहार का आंतरिक खाका मानने का विचार साइको साइबरनेटिक्स का मूल तर्क है कि हर व्यक्ति अपने बारे में एक आत्म छवि रखता है। यह छवि केवल रूप रंग की राय नहीं बल्कि अपनी योग्यता, स्वीकार्यता, क्षमता, सीमाओं और संभावित उपलब्धियों के बारे में जमा हुई मान्यताओं का ढांचा है। मार्क्स के अनुसार व्यक्ति प्रायः उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है जिसे वह स्वयं को मान चुका है। यदि कोई खुद को सामाजिक रूप से अयोग्य, लगातार असफल या अवसरों के अयोग्य मानता है तो वह बातचीत, तैयारी और जोखिम लेने में ऐसे विकल्प चुन सकता है जो उसी निष्कर्ष को मजबूत करे। इसलिए समस्या केवल कौशल की कमी नहीं रह जाती बल्कि उस पहचान की भी होती है जिसके भीतर व्यक्ति अपने कौशल का उपयोग करता है। प्लास्टिक सर्जरी के अनुभव से मार्ज ने यह अंतर पहचाना कि बाहरी परिवर्तन अपने आप आंतरिक धारणा नहीं बदलता। किसी व्यक्ति का चेहरा बदल सकता है पर यदि वह अपने पुराने अपमान, भय या हीनता को ही सच मानता रहे तो उसका अनुभव वैसा ही रह सकता है। पुस्तक आत्म छवि को अपरिवर्तनीय भाग्य नहीं मानती, वह इसे अनुभवों से बनी और नए अनुभवों, पुनर्व्याख्या तथा अभ्यास से संशोधित की जा सकने वाली मानसिक रचना बताती है। इस दृष्टि की उपयोगिता यह है कि यह आत्म आलोचना को चरित्र दोष की जगह सीखी हुई धारणा के रूप में देखने का अवसर देती है। दूसरा, सफलता तंत्र में लक्ष्य, प्रतिक्रिया और दिशा सुधार की भूमिका। मार्ज ने साइबरनेटिक्स से प्रेरित होकर मनुष्य के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को एक लक्ष्याभिमुख मार्गदर्शन तंत्र के रूप में समझाया। उनका रूपक यह है कि जैसे कोई नियंत्रित यंत्र लक्ष्य, वर्तमान स्थिति और त्रुटि के अंतर के आधार पर अपनी दिशा ठीक करता है, वैसे ही व्यक्ति भी किसी स्पष्ट उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए अपने व्यवहार में सुधार कर सकता है। इस विचार का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि गलती को अंतिम प्रमाण नहीं, प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाए। किसी परीक्षा, प्रस्तुति या संबंध में असफलता से व्यक्ति को यह जानकारी मिल सकती है कि कौन सी तैयारी, कौशल या रणनीति बदलनी है। लेकिन यदि वही घटना आत्म छवि में यह निष्कर्ष जोड़ दे कि मैं असफल व्यक्ति हूं तो प्रतिक्रिया सीखने के बजाय परिहार पैदा करती है। पुस्तक लक्ष्य को केवल इच्छा से अलग मानती है, अस्पष्ट चाहत मन को दिशा नहीं देती, जबकि अपेक्षित परिणाम का पर्याप्त स्पष्ट चित्र ध्यान और प्रयास को संगठित कर सकता है। फिर भी मार्ट्स का मॉडल जादुई स्वचालन का दावा मानकर नहीं पढ़ना चाहिए। लक्ष्य चित्र तभी उपयोगी है जब उसके साथ वास्तविक अभ्यास, निर्णय और परिस्थितियों से मिली प्रतिक्रिया पर संशोधन जुड़ा हो। आधुनिक दृष्टि से इसकी भाषा सरल और रूपकात्मक है पर इसका व्यावहारिक संकेत ठोस है। उद्देश्य तय कीजिए, प्रयास कीजिए, परिणाम देखिए और स्वयं को दोषी ठहराने के बजाय तरीका बदलिए। तीसरा, मानसिक पूर्वाभ्यास और कल्पना को प्रदर्शन की तैयारी बनाना। पुस्तक में कल्पना को केवल सुखद दिवास्वप्न नहीं बल्कि व्यवहार की तैयारी का साधन माना गया है। मार्ट्स पाठक को किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में स्वयं को शांत, सक्षम और उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करते हुए मानसिक रूप से देखने के लिए कहते हैं। इसका आशय यह नहीं कि मन में परिणाम देख लेने से बाहरी उपलब्धि निश्चित हो जाती है। अधिक व्यावहारिक अर्थ में मानसिक पूर्वाभ्यास व्यक्ति को उस व्यवहार से परिचित कराता है जिसे वह वास्तविक स्थिति में अपनाना चाहता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कठिन बातचीत से पहले अपनी बात क्रम से रखना, सामने वाले को सुनना और तनाव में भी संयमित रहना मन में दोहरा सकता है। यह अभ्यास ध्यान को भयावह अनुमान से हटाकर वांछित क्रियाओं की ओर मोड़ता है। मार्क्स के ढांचे में कल्पना और आत्म छवि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बार बार अपने को केवल विफल या असहाय रूप में देखने से निष्क्रियता बढ़ सकती है, जबकि यथार्थपरक क्षमता के चित्र से पहल करना आसान हो सकता है। यहाँ यथार्थपरक शब्द आवश्यक है। उपयोगी कल्पना कौशल तैयारी और बाधाओं को नकारती नहीं, बल्कि उन्हें संभालते हुए कार्य करने का दृश्य बनाती है। पुस्तक के अभ्यास खेल, बिक्री, सार्वजनिक बोलने और व्यक्तिगत लक्ष्यों जैसे क्षेत्रों में लागू किए गए हैं। इसकी स्थायी उपयोगिता इस बात में है कि यह प्रदर्शन से पहले मनोवैज्ञानिक तैयारी को अभ्यास का पूरक मानती है, उसका विकल्प नहीं। चौथा, विश्राम। भावनात्मक तनाव और इच्छा शक्ति की सीमाओं पर दृष्टि। मार्ड्स के अनुसार अत्यधिक तनाव, डर और आत्मनिगरानी व्यक्ति के स्वाभाविक प्रदर्शन को बाधित कर सकते हैं। जब व्यक्ति हर क्षण अपनी कमी, संभावित अपमान या गलती पर केंद्रित रहता है, तब उसका ध्यान काम से हटकर स्वयं की रक्षा में लग जाता है। इसी कारण पुस्तक विश्राम को निष्क्रिय पलायन नहीं, बल्कि मानसिक स्पष्टता वापस पाने की प्रक्रिया मानती है। शारीरिक ढीलापन, शांत श्वास और कुछ समय के लिए चिंताजनक विचारों से दूरी व्यक्ति को प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब देने में मदद कर सकती है। मार्डस इच्छा शक्ति पर अकेले निर्भर रहने की प्रवृत्ति पर भी प्रश्न उठाते हैं। उनका तर्क है कि केवल कठोर दबाव से पुरानी आदत या भय को हराने की कोशिश अक्सर भीतर के विरोध को बढ़ाती है। इसके बजाय व्यक्ति को अपने लक्ष्य, आत्मछवि और दैनिक अभ्यास के बीच सामंजस्य बनाना चाहिए। यह विचार आधुनिक व्यवहार विज्ञान के हर निष्कर्ष के समान नहीं है, पर व्यावहारिक स्तर पर यह पहचान उपयोगी है कि थकान और तनाव में निर्णय कमजोर पड़ते हैं। पुस्तक नकारात्मक विचारों को बलपूर्वक दबाने के बजाय उनके प्रभाव से कुछ दूरी बनाकर अधिक रचनात्मक दिशा चुनने पर जोर देती है। विश्राम यहाँ किसी उपलब्धि की गारंटी नहीं, बल्कि सीखने, ध्यान और संतुलित कार्रवाई के लिए अनुकूल मानसिक अवस्था है। अंत में, पुरानी असफलताओं से बनी सीमित धारणाओं को चुनौती देने की प्रक्रिया। साइकोसाइबरनेटिक्स में अतीत की घटनाओं को वर्तमान पहचान का स्थायी फैसला मानने से सावधान किया गया है। मार्ड्स का मानना है कि एक अपमान, खराब शैक्षणिक दौर, असफल प्रयास या सामाजिक अस्वीकृति व्यक्ति के मन में बहुत व्यापक निष्कर्ष बना सकती है। फिर व्यक्ति किसी एक परिस्थिति में हुई हार को अपनी स्थायी अक्षमता का प्रमाण समझने लगता है। पुस्तक इस प्रक्रिया को ऐसी मानसिक सम्मोहन अवस्था के समान बताती है, जिसमें पुराना निष्कर्ष बिना जांचे बार बार सच मान लिया जाता है। इसका उत्तर अदीप को मिटाना नहीं, बल्कि उसके अर्थ ही जांच करना है। व्यक्ति पूछ सकता है कि क्या वह घटना वास्तव में मेरी पूरी क्षमता बताती है? क्या परिस्थितियां अलग थीं और आज मैं कौन सा छोटा प्रमाण जुटा सकता हूं जो पुराने निष्कर्ष को चुनौती दे? यह तरीका आत्मछवि के बजाय अधिक सटीक आत्ममूल्यांकन की ओर ले जाता है। मार्ज छोटे सफल अनुभवों को महत्व देते हैं, क्योंकि वे नई आत्मछवि के लिए विश्वसनीय सामग्री बनते हैं। इसलिए परिवर्तन केवल पुष्टि वाक्य दोहराने से नहीं, बल्कि नए व्यवहार के प्रमाण से मजबूत होता है। पुस्तक खुशी को भी बाहरी उपलब्धि के बाद मिलने वाला पुरस्कार भर नहीं मानती, बल्कि उद्देश्यपूर्ण कार्य, आत्मस्वीकृति और वर्तमान में रचनात्मक भागीदारी से जुड़ी आदत के रूप में देखती है। इस भाग का मुख्य संदेश है कि व्यक्ति अपनी पुरानी व्याख्याओं से प्रभावित हो सकता है, पर उन्हें जांचने और बदलने की क्षमता भी रखता है। निष्कर्ष में, साइकोसाइबरनेटिक्स उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है जो बार बार आत्मसंदेह, प्रदर्शन चिंता, टालमटोल या पुरानी असफलताओं से बनी सीमित धारणाओं को समझना चाहते हैं। यह पुस्तक उन लोगों को भी प्रासंगिक लगेगी जो लक्ष्य निर्धारण को केवल कार्यसूची बनाने के बजाय आत्मधारणा, भावनात्मक स्थिति और व्यवहारिक अभ्यास से जोड़कर देखना चाहते हैं। इसका प्रमुख व्यावहारिक लाभ यह है कि यह व्यक्ति को परिणाम पर निष्क्रिय आशा रखने के बजाय स्पष्ट लक्ष्य, मानसिक पूर्वाभ्यास, शांत अवस्था और प्रतिक्रिया के आधार पर सुधार की प्रक्रिया सुझाती है। बौद्धिक स्तर पर इसकी खासियत आत्मछवि को व्यक्तित्व की सतही अवधारणा ना मानकर व्यवहार को दिशा देने वाले ढांचे के रूप में प्रस्तुत करना है। समान श्रेणी की कई पुस्तकें केवल उत्साह, सकारात्मक कथन या अनुशासन पर केंद्रित रहती है। मार्ट्स की पुस्तक इनसे अलग इसलिए है कि वह व्यक्ति के भीतर काम कर रही लक्ष्य प्रणाली और उसके आत्मवर्णन के संबंध को केंद्र में रखती है। हालांकि इसे पढ़ते समय सावधानी भी जरूरी है। पुस्तक की भाषा और कुछ वैज्ञानिक दावे अपने समय की उपज हैं, इसलिए इन्हें आधुनिक नैदानिक मनोविज्ञान का पूर्ण विकल्प नहीं मानना चाहिए। गंभीर अवसाद, आघात या चिंता की स्थिति में पेशेवर सहायता आवश्यक हो सकती है। फिर भी यथार्थपरक ढंग से पढ़ने पर यह पुस्तक एक उपयोगी प्रश्न छोड़ती है। क्या मेरी वर्तमान आदतें मेरी वास्तविक क्षमता से संचालित हैं या मेरे बारे में बनी पुरानी और अधूरी कहानी से? यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मैक्सवेल मार्ज, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।